कृष्ण भजन से प्रेमा भक्ति के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा वो दूर हो जाए। इसलिए आत्म सुख दुख गोपी नहीं का विचार, गोपियों का आत्म और सुख और दुख का विचार नहीं। हम साधकों को भी अपने सुख और दुख का विचार नहीं हो करके, इससे गुरु और वैष्णव को सुख आता है या दुख, इस कार्य से गुरु को असंतोष होगा, इस काम से गुरु को सुख होगा, ये तो विचार करने की क्षमता भगवान ने दी है। वैष्णव को इस काम से सुख होगा नहीं? गुरु को सुख होगा या दुख होगा, ये तो विचार कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जीवन में कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके द्वारा उन लोगों को कोई कष्ट हो। इसलिए हमको जितना भी कष्ट हो, जितना ही सुख हो, इसकी परवाह नहीं। नागनी आपनी दुख सबे बांछी तारी सुख, मोरे यदि दिले दुख महासुख, सही दुख मोर सुख बल। ये सब विचार रखना चाहिए, छोटी छोटी सी बात, ये सुनने का तात्पर्य, तब तो भक्ति भाई होगी। नहीं तो भक्ति नहीं होती, भक्ति ऐसी सहज चीज नहीं। कहता गया एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम बोलो बस तुम्हारा हो गया। किंतु है इसमें विचार सुख रूप में करेंगे तो बहुत सी बातें हैं। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, गोपियों के कृष्ण को सुख देने के लिए ही जितनी उनकी शारीरिक मानसिक वाचिक और मन की जितनी भी चेष्टाएं हैं सब किसके लिए, सब समय 24 घंटा उन्हीं की चिंता रहती है कृष्ण, अपने लिए कभी नहीं। हम लोगों को अभी कनिष्ठाधिकार में सब समय अपने लिए, कृष्ण का भजन करेंगे तो हमको क्या सुख होगा, भवसागर को पार कर जाएंगे, नित्य शांति मिलेगी है ना, पराशांति वापससी शाश्वत। इसलिए भजन करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी ऐसा ही विचार करता है, मध्यम अधिकारी में कुछ जानने लगता है, उत्तम अधिकारी में नहीं, जो कुछ हम करेंगे कुछ। ये लोभ दिया गया है गीता में, कृष्ण ने लोभ दिया है, अंत तब साधक इसी तरह से चले। अर्जुन को तो उसे ही कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन भी वैसे ही बने हुए हैं, अभिनय कर रहे हैं, उनके माध्यम से दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। शांति की इच्छा करने वाले कहते हैं निर्विशेषवादी, शांति चाहिए। वैष्णव होने से कनिष्ठ वैष्णव भी शांति नहीं चाहता, हमको जितना सेवा में जितना भी दुख है वही चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, उनका मानसिक वाचिक मानसिक और शारीरिक जितना भी चेष्टाएं और व्यवहार होता है वो सब कृष्ण के सुख के लिए होता है। कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, कृष्ण से केतु करे शुद्ध अनुराग, ये कृष्ण के को सुख देने के लिए ही, उनके प्रति अनुराग करने के लिए सब कुछ का प्रत्याग करने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। किस लिए प्रत्याग कर रहे हैं, प्रत्याग करने से लोग प्रशंसा करें महात्यागी है ना, कपड़ा किस लिए नहीं पहनते, कहेंगे महा ये जोगी है, ये कुछ कपड़ा नहीं पहनते। अधिकांश यही वैराग्य होता, भक्ति के पहले जो वैराग्य होगा अपने प्रचार के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब होता है, और भक्ति होने के बाद में स्वतः जो वैराग्य होता है वो भक्ति का फल है, वो भक्ति के लिए सहायक और पुष्टिकारक होता है। तो कृष्ण लागी सब परित्याग, प्रत्याग भक्ति नहीं, प्रत्याग करने से सुखी नहीं होंगे कृष्ण, कैसे होंगे, कृष्ण के प्रति अनुराग से, उनके प्रति चेष्टा करने से, ये कैसे कृष्ण को सुख हो, ये व्यवहार करने से तब कृष्ण को सुख होगा। एवं मदर्थो जित लोक वेद स्वानां हि वो मई अनुवृत्ते बला, मया परोक्षं भजतां तिरोहितं मासुईतम मारहत तत्प्रियम प्रिया। कितना बज गया, साढ़े छः बस, कल इसकी व्याख्या होगी। आज पतितानां पावनेभ्यो
छटाभिरभितो गुरवे गौरचंदाय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्
आदि चतुर्थ परिच्छेद
चैतन्य चैतामृत में हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्वरूप लक्षण प्रेम का स्वरूप और तटस्थ लक्षण दोनों से काम के स्वरूप और तटस्थ लक्षण से अंतर है। विशेष करके स्वरूप वाला जैसा कुछ क्षमता होने पर भी तटस्थ वाला लक्षण न रहे, यदि न मिले तो वो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। जैसे भक्ति के लिए वो स्वरूप उसका जो लक्षण है अनुकूल्य कृष्णानुसरण रहने पर भी यदि अन्याभिलाषिता है और ज्ञान कर्म आदि के द्वारा आवृत है तो वो भी शुद्ध नहीं हो। उसी तरह से यहाँ भी तटस्थ लक्षण का जो बतलाया लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म और सब जितने हैं लज्जा धैर्य ये यदि तटस्थ लक्षण ये दिखता है ये कार्य है ये सब यदि दूर न रहें और वो स्वरूप वाला रहे भी तो वो गड़बड़ है शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों का होना उसमें जरूरी है। काम से प्रेम का ये दोनों ही तटस्थ और स्वरूप लक्षण दोनों पृथक है। एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति और एक है माया शक्ति की वृत्ति, ये स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण में एक कृष्ण को की तरफ में सब समय जाता है कृष्ण सुख के लिए लालसा और एक में है अपने भोग की लालसा। यदि इन देह धर्म आत्म धर्म लोक धर्म को छोड़ता भी है यदि कोई या छोड़ती है कोई तो भी कुछ अंतर नहीं आता, अपने सुख के लिए ही ऐसा होता है। इसलिए अब उसी को उदाहरण के द्वारा दो उदाहरण श्लोकों के द्वारा बतलाते हैं। उनमें अपने सुख का लेश भी नहीं है, केवल कृष्ण सुख का है। इसलिए तत्ते सुजात चरणम्बरु हम तनेशु भीता शनै दधि महि इत्यादि बतलाया। भीता शनै प्रिय दधि महि कर्कशेष ये बतलाया। अपने सुख के लिए हम नहीं करती, बल्कि कृष्ण को के सुख में इतना भी कुछ हुआ बाधा आई हम उसे सह नहीं सकते। सब समय कृष्ण के सुख के लिए जो कुछ भी करती हैं कृष्ण के सुख के लिए, ऐसा कहीं कोई दूसरी जगह उदाहरण नहीं है। अब दूसरा बतला रहे हैं आत्म सुख दुख गोपीर नहीं का विचार, अपने सुख और दुख का विचार, बल्कि कृष्ण सेवा में अपना जितना भी दुख है वो सुख के समान प्रतीति होती है। जो कुछ दुख है, माता पिता का प्रत्याग, पति का प्रत्याग भी बहुत सुख में लगता है जब कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। और भी जितने भी संसार में दुख हो सकते हैं वो सब दुख उनको सुख प्रतीत होता है। जैसे माता पिता को प्रत्याग करना, स्त्री को प्रत्याग करना, धन को लात मार देना और निर्धन हो जाना इत्यादि सब एक तरह से अभिशाप है। समाज के लिए ये सब उचित नहीं, किंतु ये सब कृष्ण की सेवा में अपने को नियुक्त करने पर यह आनंद में लगता है जी वाह, मैं ये कहाँ संसार में विष का कूप में पड़ा हुआ था, टट्टी के गर्त में पड़ा हुआ था, गड्ढे में, और मैं अब निकल करके कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। कब मिलेगा? जबकि भजन में सुख की अनुभूति होने लगेगी तो ना? जैसे एक कोई व्यक्ति संसार के समस्त कुछ को त्याग करके एक व्यक्ति से प्रेम किया, जब मिलते हैं तो वो जो जितना जो त्याग किया है वो दुख इसमें मालूम होता है सुख क्षणिक पर। उसी तरह से कृष्ण से की सेवा पाने पर, कृष्ण का नाम करने पर, कृष्ण की कथाओं का स्मरण करने पर जब उसमें कुछ टेस्ट मालूम होता है, रुचि, तब ये समझेगा, अन्यथा नहीं। और ये स्थायी रूप में होगा तो जितना भी दुख था वो सब सुख के रूप में परिणत हो जाता है। अब इसी को इस श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। एवं मदत्थो झितलोक वेद स्वानांगी वो मई अनुवृत्ते बला मया परोक्षम भजतां तिरोहितम मई सूतम मारहत्त प्रियम प्रिया। ये कृष्ण बतला रहे हैं, ये गोपियों को अपने सुख की कोई भी लालसा ने सर्टिफिकेट दे रहे हैं ने? ये कृष्ण अपने तरफ से, गोपियां तो अब अपने तरफ से वो तत्ते सुजात बतलाया। यदि मैं कह रहा हूं यही प्रमाण नहीं है, हमारा जो जिससे बातचीत चले वो भी यदि प्रमाणित करे, जैसे कृष्ण प्रमाणित करें जहां ये ठीक, तब तो वो प्रमाणित चीज होगी। इसलिए गोपियां कर सकती हैं, अपने मन से कह रही हैं, इसलिए कृष्ण की स्वीकार करने की मोहर उस पर लगनी चाहिए। तो कृष्ण इसी को ग्रहण कर रहे हैं, बोल रहे हैं एवं मदर्थो झितलोक वेद। ये श्लोक श्रीमद्भागवत के राजपंच अध्याय के 32 अध्याय का अंत है। कृष्ण गोपियों के रोदन पूर्वक कीर्तन से अब रह नहीं सके, वो वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने आसन की कल्पना की, गोपियों ने अपने अपने ग्रुप किए, उन्होंने दुपट्टों को रख करके और उस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए वही वनमाला धारण करके कुछ लज्जित से होते हुए वहाँ पर प्रकट होकर आए बैठे। उसमें 8 प्रकार की गोपियाँ, 8 गोपियाँ अपने अपने भाव से कृष्ण का कोई स्वागत और ये सब किया। किसी ने उनका हाथ पकड़ करके अपने कंधे पर रख लिया, कोई उनके पान चिबाते हुए को अपने हाथ में लेकर के देने लगी, कोई उनके चरणों को, कोई बाम कोई दाहिने ये ग्रहण किया, कोई दूर से उन्हें देख रही हैं, भीतर में ले जा करके उनको हृदय में लेकर के आलिंगन, और कुछ ने अपने बंकिम नैनों से उनको कटाक्ष से उनका वेद किया। ये 8 प्रकार की गोपियों का। इसके बाद में जब बैठे तो गोपियों ने कुछ प्रश्न किए, भजन करता है उसका जो भजन करता है, भजन करने वाले से जो भजन करते हैं, जो भजन नहीं करने पर भी सबको भजन करते हैं, माने प्रेम करते हैं, तो प्रेम नहीं करने वाले को भी प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करे और ना करे किसी को से प्रेम नहीं करते। महाशय जी आप बतलाइए उनमें से कौन से आप हैं। कृष्ण सुन करके मुस्कुराते हुए बोले, जो जो भजन करने के बदले अर्थात प्रेम करने से जो प्रेम करते हैं, ये तो एकांतिक रूप में इसमें सौहार्द नहीं है न धर्म है, ये तो सीधा सीधी स्वार्थ है, एकांत स्वार्थ, इसमें प्रेम की कुछ बात नहीं है, वो प्रेमिक व्यक्ति नहीं है जो लेन देन का लिए करता है। बनियागिरी है। दूसरी बात मैं इसमें नहीं हूं। दूसरी बात, जो प्रेम करते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं वो सबको प्रेम करते हैं, इनका प्रेम शुद्ध है, इसमें सौहार्द भी है और धर्म भी है। यह प्रेम माता पिता का है, इसमें भी माता पिता के प्रेम में भी कुछ एक होता है दृश्य एक अदृश्य। अदृश्य फल के लिए कोई स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं अदृश्य फल के लिए, और कोई दृश्य फल के लिए। जैसे हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उसका फल साथ ही साथ नहीं मिलता, ये दृश्य अदृश्य है। कब वर्षा होगी या कब उनको स्वर्ग मिलेगा ये अदृश्य है, और दृश्य वह प्रेम, प्रेम का प्रेम फल है। जैसे हम गाय को प्रेम करते हैं, गाय को खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय साथ ही साथ में दूध देती है, उसे घास चारा दाना इत्यादि को जब दूध दे देगी तो साथ ही साथ उसको देख लेंगे, ये दृश्य है। इसी तरह से प्रेम भी वो दो प्रकार का है, एक दृश्य एक, किंतु दोनों में फल की लालसा है। वैसा ही पहला जो बतलाया, जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं ये दो कारणों से ही, एक दृश्य होगा ये एक अदृश्य होगा, फल दोनों में है। कृष्ण कहते हैं इन दोनों में से मैं कोई एक नहीं, न दृश्य ही न अदृश्य ही। देवताओं का जो हमारे प्रति जो प्रतिदान है, ये भागवत में तो लिखा है कि मैं देवताओं के, जैसे देवता लोग होते हैं उनकी पूजा करने पर वो फल देते हैं, क्या मुझे याद
जयंती जथा देवान देवा
तथा ही बता गोविंद भुज गुप्तायाम के बाद में है, वो देवता भी वैसे ही करते हैं। तो उसमें देवताओं का जो फल जो देने का है, हम उनके लिए जो कुछ देते हैं उसके बदले में वो भी कुछ देते हैं, किंतु थोड़ा सा अदृश्य होता है, कभी कभी दृश्य भी हो सकता है, यज्ञ करने के बाद में वर्षा हो जाएगी उससे हमारा जीवन धारण होता है, किंतु अधिकांश अदृश्य। और गाय इत्यादि का जो है ये दृश्य है। ऐसे हम जो जिससे प्रेम करते हैं वो भी प्रेम करता है, और जो नहीं जान बहुत दूर इसका फल है, अभी नहीं करते हैं किंतु प्रेम करेंगे, ये अदृश्य है, किंतु दोनों में फल की संभावना है। भगवान इसे कहते हैं कि मैं इनमें से कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ बनियागिरी, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो। दूसरा, जो निरपवादो अयम, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, शुद्ध प्रेम है। प्रेम कोई करे ना करे, माता पिता जैसे हैं, उसमें क्या है, आप मध्यमा हो ना, गोपियां कैसी हैं, मध्यमा, मध्यमा माने मध्य कटी भाग, बहुत सुंदर है, बहुत कमनीय परम सुंदरी हैं, और ये तुम्हारा जो प्रश्न है उसके मध्य में जो है वही तुम हो। मैंने पहला प्रेम के बदले प्रेम, और दूसरा है पूर्ण काम आप्त काम गुरुद्रोही और आत्माराम, तो दोनों में से मैं नहीं, दोनों में से तुम लोग नहीं, तुम कौन है, मध्यमा, तुम मध्यमा, क्योंकि मध्य क्या, मध्य क्या कहते हैं, तुम हे
सुमध्यमा,
सुमध्यमा, सुमध्यमा तुम ही सुमध्यमा हो और तुम सुमध्यमा हो। सुमध्यमा माने क्या? इन दोनों के बीच में तुम मध्यम वाली हो और तुम सुमध्यमा अत्यंत सुंदर। और तुम लोग का यह भाग जो है, यह भाव जो कोई प्रेम करे ना करे जो तुम करती है हमारे प्रति, ये सुमध्यमा अत्यंत और भी सुंदर है। यही ये बतला है। गोपियां सुनकर के यहाँ पर थोड़ी सी प्रसन्न हुई, ये हमारे लिए ये कह रहे हैं। अब देखें ये अपने लिए क्या कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा, और एक तो माता पिता का जो प्रेम होता है इसमें भी कुछ प्रकार हैं। माता पिता जो स्नेह करते हैं उनमें भी कुछ हो सकता है, अधिकांश ही होता है कुछ स्वार्थ, पिंडदान करना, हमारे वृद्धावस्था में ये सब करेगा। किंतु अधिकांश माता पिता का ये होता है, ये सब ही चिंता नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इसलिए करते हैं। चाहे ये भले ही कुछ न दे, कुछ न करे, वृद्ध अवस्था में भी न दे, मरने पर भी पानी न दे, स्नेह करना एक हमारा कर्तव्य है। स्नेह करना उनका स्वभाव है, इसलिए कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रख करके वहां पर कृष्ण ने ये कहा, तुम लोगों का जो स्नेह है उस माता पिता से भी अधिक है। पहले बतलाया माता पिता का स्नेह प्रेम, बेटा कुपुत्र हो जैसा भी हो, बेटी कुपुत्र हो नहीं मानती है तभी पिता माता का स्नेह अपने संतान पर होगा। इसमें किंतु कुछ स्वार्थ की गंध हो सकती है, किंतु भक्तों का जो स्नेह होता है, भक्तों का जो लोगों के प्रति जो प्रेम होता है, गुरु का जो भक्तों के प्रति होता है, ये स्नेह उससे बहुत लाखों कोटि गुना। यदि प्रहलाद महाराज जी हैं, असुर बालकों को बड़े प्रेम के साथ में उनको भगवत भक्ति की बातें कह रही हैं, उनका उनसे लेने का कुछ इरादा है, भूत में भविष्यत में या वर्तमान में कभी भी कोई भी स्वार्थ है? माता पिता का तो है, जैसे ये वृद्ध होने पर हमारा बच्चा पालन करेगा, हमारा पिंड तर्पण इत्यादि देगा, किंतु भक्तों का क्या है? जो जीवों को संसार में दुख दे करके उनके उद्धार के लिए, उनके सुख के लिए ही उनको उपदेश दे करके उनको स्नेह करते हैं। किस लिए? विशेष करके प्रहलाद महाराज जी, क्योंकि मुक्त पुरुष हैं। हम लोगों में हो सकता है भाई ये व्यक्ति सुंदर है, ये धनवान है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके प्रति किसी गुरु का स्नेह हो सकता है ना? आजकल कलिकाल में ऐसे ही अधिक मिलता है ना? अधिकांश आजकल ऐसा ही शुद्ध गुरु मिलना बड़ा भारी कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज में, सुखदेव गोस्वामी में, नारद जी में ये चीज नहीं होगी। उनका जो बिना प्रेम के भी प्रेम करते हैं दूसरों को, जीवों को जो संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं, भोग रहे हैं, उनको बिना किसी हेतु दे तो ईशु बिनु हेतु, क्योंकि ये वैष्णव लोग बड़े कृपालु होते हैं, उनका विरुद्ध आचरण करने पर भी जगाई मधाई ने, नित्यानंद प्रभु जी ने उनको प्रेम दिया। ऐसे भक्तों का जो किसी से प्रेम करना है, ये माता पिता के स्नेह से भी लाखों कोटि गुण उच्च है। किंतु हमारा ये तुम में है, मैं स्नेह करूं ना करूं, कुछ भी करूं, तुम लोगों का हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम है। फिर गोपियां भी पूरा संतुष्ट नहीं हुई, बाक चतुरता है ना इनमें, बाक चतुर हैं, इसलिए कृष्ण अब तीसरा बतला रहे हैं। जो प्रेम करते हैं उनको ही प्रेम नहीं करते हैं, तो जो नहीं प्रेम करते उनको क्या प्रेम करेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं, गोपियों ने प्रश्न किया था उसका उत्तर अब दे रहे हैं। इस कोटि में चार व्यक्ति आएंगे। पहला आत्माराम, आत्मा में रमण करते हैं, अर्थात तो उनकी अंतर्दृष्टि ही है, बहिर्दृष्टि नहीं है। ऐसे महात्मा लोग, लौकिक कोई दृष्टि ही नहीं है, कोई दुखी है सुखी है क्या है नहीं है, वो आत्मा में रमण कर रहे हैं, अर्थात तो आंतरिक उनकी दृष्टि, भगवान पर सब समय उनकी दृष्टि निकलता है। इसलिए कौन उनको प्रशंसा कर रहा है, कौन कुछ को दे रहा है नहीं दे रहा, उनसे कोई मतलब नहीं, वो किसी से प्यार नहीं। प्रेम नहीं करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कोई पत्थर मार रहा है और कोई हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं, वो उनका ध्यान ही नहीं है। अंतर्दृष्टि जो और आप्तकाम बहिर्दृष्टि तो है, अंतर्दृष्टि के साथ साथ में बहिर्दृष्टि भी है, किंतु वो पूर्ण काम है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। नहीं जा गया ना लो, जब अंतर्दृष्टि सब समय है, ऐसे जो आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा तो भीतर है ना। दूसरा हुआ पूर्ण काम जो है, उनकी बहिर्दृष्टि है किंतु ऐसे पूर्ण है, पूर्ण मनोरथ है, उनको कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, अब उनको मान लिया कि जैसे आप कपड़ा लेकर के देते हैं, वो कपड़ा पहनते नहीं है तो क्या करेंगे? जिनको अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है उनके सामने अर्थ दी, क्या प्रयोजन है? एक गाड़ी के नीचे एक ऋषि रहते थे, रैक्य, और उनको मान लिया कि जैसे अर्थ इत्यादि सब ढाल दे, कोई क्या प्रयोजन है? कोई जरूरत, क्योंकि वो पूर्ण मनोरथ। तो वैसे जो पूर्ण मनोरथ, जब पूर्ण मनोरथ है वो किसी से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। और तीसरा है अकृत, अकृत द्रोह, नहीं नहीं इसका पहले अकृतज्ञ, अकृतज्ञ गुरुद्रोह, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ मैंने जो की हुई भलाई को नहीं मान करके उसको स्वीकार नहीं करता है। माता पिता की का उपकार ऋण, गुरु का उपकार ऋण, कुछ नहीं स्वीकार करता, अवज्ञा करता है, ये अकृतज्ञ। कृतज्ञ उनका जो कृत है, उपकार है, उसको अज्ञ न जानना, उसको भूल जाना, ये अकृत। काम भी परिपूर्ण रूप में है, ये तो बात ठीक है, किंतु मैं तो नंदन नंदन हूं ना, इसलिए मेरे अंदर में अभाव है किस चीज का, प्रेम का आस्वादन करने का। और नहीं तो बंसी बजाता तुम्हारे साथ में नित्य किया, ये कैसे करता? और आपका काम भी इसलिए नहीं हूं, एक तो बुलाया तुम लोगों को और अभी तुम लोगों के सामने आ गया ना, और मैं तुम्हारी प्रशंसा भी कर रहा हूं, तुमको खुश करने की चेष्टा कर रहा हूं, मना रहा हूं, तो आत्मकाम कहां रहा? इसलिए मैं न आत्मकाम हूं और न गोपियां करेंगे, ठीक। अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे बोले जैसे अकृतज्ञ, मैं अकृतज्ञ भी नहीं। क्यों? तुम सब सोच रहे तुमने स्त्री धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, शरीरगत धर्म सब कुछ को छोड़ करके हमारे पास आई और हम तुम्हें छोड़ करके चले, ऊपर से कृतज्ञता अकृतज्ञता मालूम होती है। किंतु मैं अब जो तुम्हारे सामने आया तब तो ये तो अब तो कृतज्ञ हूं, आ गया तुमसे बातचीत कर रहा हूं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, और मैं इसका कारण भी बतला रहा हूं, जैसे मैं क्यों अंतर ध्यान, ये कारण बतला। यदि कोई ऐसा होता अकृतज्ञ तो ऐसा करता? तो तौबा क्या, मैंने तो तुम्हें तौबा क्या तो की नहीं, मैं तो तुम्हारे साथी था, मैं तुम्हारा भजन भी कर रहा था, तुम्हारे इन सुंदर सुंदर बातों को मैं सुन रहा था, जो प्रेम में पगी हुई बातें थी टेढ़ी मेढ़ी, इसको मैं सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं भीतर ही भीतर का साधु 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 करता, किंतु मैं तेरा छिप करके था, छिप करके ये सुन, मैं प्रकट नहीं करता, हमारा प्रेम ऐसा नहीं ये सबके सामने प्रकट करता, मैं प्रेम प्रकट नहीं किया, किंतु मैं था तुमके साथ। विशेष करके तुमको याद दिलाऊं, जब हमारे पैरों की छाप देखी तो तुमने क्या कहा, मुझे तुम लोग को याद है अन्यराधी, तो मैं सब छिप करके सुन रहा था, कोई भी बात मुझसे, मैं तो वहीं पर था, प्रेम में पगी होने के वजह से देह की सुध बुध नहीं थी, तुम हमको देख नहीं सकी, मैं थोड़े से अंधकार में थोड़ी दूर के ही दो अंगुल की दूरी पर मैं खड़ा था, तुम लोगों ने देखा नहीं, जितनी भी बातें हमने सुना तो फिर सुन करके तो फिर आप प्रकट क्यों नहीं हो गए, यही तो बतला रहा हूं मैं गुरुद्रोही, गुरुद्रोही तीन प्रकार के होते, पहले वाले को अकृतज्ञ कहा, वो अवज्ञा केवल करते हैं किंतु कुछ करते नहीं, उसके बदले में माता पिता को मारना पीटना कोई गाली देना अपमान करना वो नहीं करते, कहा जे भाई आपसे हमारी बनते नहीं है, मैं अपनी पत्नी को लेकर के बच्चों को लेकर के आपसे आप कोई हमारा हमारी बनती नहीं, बस यदि कभी कोई जरूरत है तो बुला लेना, हमें स्मरण कर लेना, हम आ जाएंगे, ये क्या हुआ, भूल जाना हुआ माता पिता के उपकार को, तू बचपन में क्यों नहीं ऐसा कहा, जिस समय नंगा पैदा हुआ है? उस समय में जब करवट फिराने वाला कोई नहीं था, उस समय तुमने क्यों नहीं कहा, तो वो तो माता पिता कहेंगे, तो ये पहला हुआ, ये इतना दोष है किंतु पूरा दोष खूब संपूर्ण रूप से दोष नहीं, ये अवज्ञा वाली, और इसमें द्रोही है ना, द्रोहाचरण का, इसमें भी सहेतुक अहेतुकी, ये दो प्रकार के द्रोहाचरण है, लड़के की शादी हो गई, बहू घर में आ गई और सास बात बात में उसे भिड़ जाती और वो भी भिड़ जाती, पति का मन खिन्न हो गया, माने बेटे का मन खिन्न हो गया, भाई एक जगह में ये तो रोज रोज की आफत, अब मैं क्या करूं, बहुत दिन सहा सहते सहते किंतु अब सहा नहीं गया, पिताजी से कहा पिताजी अब तो बनती नहीं है इसी, तो मैं अलग ही हो जाऊं, पिताजी बहुत दुखी, नहीं बेटा किंतु हमसे सहा नहीं जाता, एक तो ये बात हुई और दूसरा हुआ बिना किसी कारण के पिताजी वृद्ध हो गए हैं, थोड़ी सी खांसी उठती है, रात में खांसते हैं, दिन भर आपको तो फुर्सत नहीं, रात भर भी हम लोगों को चैन से सोने देते हमसे, यानी आप निकल कहे ये तो मर गया, तुम्हारा घर क्या, तुम्हारा कुछ नहीं है, निकलो, मारपीट ये सब चीजें होना ये सहेतुक है, और एक होता है अहेतुक बिना किसी कारण के दोहाचरण करना माता पिता, और एक तीसरा है तीसरा भी एक कारण है, नहीं नहीं एक और है, ये सब मिला करके पहला एक दूसरा दो तीसरा
चार
तीन और गुरुद्रोहिता वाला तीन, ये कितना हुआ, हाँ हुआ
पहले एक दूसरा दो तीन तीसरे वाला चार,
तीन ही रखो तो ये तीन कितना हो गया,
छह,
और तीन प्रकार का ये गुरुद्रोही नौ, ये याद नहीं आ रहा, ये नौ प्रकार की बात है, कर्ण में इनमें से कोई नहीं, जिस समय कृष्ण ने ये कहा कि मैं ये नहीं हूं, आपका काम नहीं, आत्मराम नहीं और अकृतज्ञ, तो गोपियां बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। ये इसमें सबसे भयंकर है वो गुरुद्रोही वाले, तो ये अपने ही इन्होंने स्वीकार कर दिया। तो वो कुछ हंसने लगी, इधर उधर कनखी मारने लगी, देखो अब अपने आप हम लोगों के ये फांद में पड़े, अब यही कहेंगे जी मैं वही हूँ। कृष्ण ने नहीं नहीं मैं वो ऐसा गुरुद्रोही भी नहीं, कैसे नहीं हूं इसी चीज को ये बतला रहे। एवं मदत्थो चितलो, इसके पहले एक और श्लोक है, अनुवृत्ते बला, इसमें तो ऐसा इसमें नहीं, इसके पहले वो श्लोक है कौन सा, एक श्लोक है जल्दी लाओ। नाहं तु भजताम नाहं तु सख्यो, नाहं तु सख्यो, देखो नाहं तु सख्यो तो भजतो अपि जंतु भजाम्य ईशाम अनुवृत्तये वृत्तये, अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो अलब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान् निभृतो न वेद। नाहं प्यारी सखियों, संबोधन यहाँ पर किया, मैं गुरुद्रोही नहीं, प्यारी सखियों हमारी तुम सखी हो, वो कैसी सखी हो, प्राण प्यारी सखी, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं गुरु गुरुद्रोहिता करूंगा ये कभी संभव नहीं। भजतो भी जंतुन न भजामि, भजते हुए जो जीव लोग हमारा भजन करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, मैं वैसा प्रेम नहीं करता, अतः तू मैं प्रेम को दिखलाता नहीं, इसके बहुत से कारण है। क्या कारण है, अनुवृत्ति वृद्धये, उनकी हमारे प्रति जो अनुवृत्ति है, स्मरण है, चिंतन है, ध्यान है, वृत्तये उसको बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए करता है। दो प्रकार से, अभी जो जात प्रेम नहीं है, जात प्रेम और एक अजात प्रेम, हम लोग किस श्रेणी में है यहाँ पर जितने हैं, अजात श्रद्धा, अजात श्रद्धा हम बोल रहे अजात पक्षामी वो अभी पक्ष प्रेम रूपी पक्ष की अभी श्रद्धा ही, उसका भी रोआ भी नहीं उठा है, लंबी बात कर रहे हैं, बड़े ऊंची बातें। तो जो जात शब्द हैं, अजात शब्द हैं, कौन बिल मंगल कोटि के लोग, जो साधक हैं, कौन बिल मंगल हैं, ऐसे ऐसे लोग जो कि सब कुछ छोड़ करके एकदम प्रेम में दीवाने हो गए हैं, इन लोगों को भी नारद जी जैसे लोग को एक बार झलक मैंने दर्शन दी, इसके बाद नहीं दी, अनुवृत्ति वृत्ति, उनकी हमारे प्रति जो लगी हुई वृत्ति है, मन की वृत्ति है, इसको और बढ़ाने के, अतः तो उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, नहीं तो यदि नहीं बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद में कमते 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 अब प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहाँ तक उनको प्रेम तक लाना है, सिद्ध प्रेम, अतः स्वरूप सिद्धि से उनको वस्तु सिद्धि में लाएंगे तब वह प्रेम स्थायी होगा। अभी हो सकता है कि वहां से कम होकर के नीचे गिर जाए, इसलिए उसको स्थायी बनाने के लिए जो अजात प्रेम वाले हैं उनका प्रेम बढ़ाने, जैसे नारद जी हैं, बिल मंगल हैं और लोग हैं, कभी स्फूर्ति हुई श्याम सुंदर इस कदम्ब वृक्ष के नीचे, अरे देखो तो ये तो सुंदर पीताम्बर फहरा रहा है, पीताम्बर फहरा रहा है और सुंदर गले में वैजयंती माला है, बंसी अथरों पर है, यहाँ पर अलका सब मानो भ्रमर चारों तरफ से उनके मुखमंडल को चंद्र को घेरे हुए, कमल को घेरे हुए हैं और उनकी लटे में से दो एक केस सामने भी कृष्ण के आ रहे हैं, वो और भी सुंदर, कानों में कुंडल झलमला रहे हैं और किसी जगह में तिरछे नेत्र करके वो देख रहे हैं, मंद मुस्कान है, ऐसा सुंदर रूप उनका है। और देखते ही फिर देखा क्या, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, खोजते 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 एकदम बेहाल हो कर रोने लगा, डिस्टर्ब मत करो चुपचाप दर्शन नहीं। जैसे उदाहरण दिया कि कोई धन किसी को मिल जाए, गरीब दरिद्र व्यक्ति को, और वो धन हटक चोरी चला गया और उस समय दिन रात उसी की चिंता में मस्त है, ठीक उसी प्रकार से अनुवृत्ति, तुम्हारी जो अनुवृत्ति निरंतर जो वृत्ति है उस वृत्ति को बढ़ाने के लिए मैं दिखाई नहीं, दर्शन दे करके नहीं करता है प्रेम, प्रेम कर रहा हूँ भजताम, हमारा वाक्य झूठा नहीं है, ये जथांग माम प्रबदंते ताम तथैव, ये बात तो ठीक है, केवल तुम्हारे ही समय में तुम्हारे लिए ये पूर्ण नहीं है, यहीं पर वो भंग मेरी प्रतिज्ञा हुई, किंतु दूसरे लोगों के साथ मैं ऐसा करता हूँ। यथा अधनो लब्ध धने, अत्यंत दरिद्र व्यक्ति, उसको कहीं से मिल गया चिंतामणि और मिल करके एक लोहे को स्पर्श कराया वो सोना हो गया, या चिंतामणि थी या वो पारस पत्थर, या एक किया इसके बाद में कोई देखा जिससे ये बात है, जिसे लोहा सोना जाता है, बस उसने क्या किया चोरी करके लेकर के चला, अब वो ढूंढते 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 परेशान, ऐसा जैसे सांप का मणियारी, सांप का मणि यदि कोई चोरी कर ले, जंगल में कोई जाते हैं बड़े लोहे का भार लेकर के और पेड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर कि सर्प आता है, उस मणि को रख करके और अपने खाने के लिए वो सब चारों तरफ में देखता है और फिर देखता है जैसे अब हमारा पेट भर गया, फिर लौट करके आ करके मणि को लेकर के अब उसी प्रकाश में वो देखता है। कोई व्यक्ति इसको लक्ष्य किया और पेड़ पर चढ़ गया और टोकरी जैसे कोई लोहे का भार कोई चीज़ ले करके और ऊपर से उसको गिरा दिया, सर्प अब दौड़ करके आया किंतु वो मणि को पाया नहीं, छटपट करते वहीं पर प्राण छोड़ दिया, शरीर भी अपना छोड़ दिया, मणि भी रह गई। ऐसे ही भगवत प्रेम है, इससे भी लाखों गुणों से, इसलिए कहते हैं यथा लब्ध धने विनष्टे, उसका धन प्राप्त होकर के फिर विनष्ट हो जाए, तत्चिंतयानि निभृतो न वेदः, अर्थात निरंतर ध्यान की उसका लगा रहे, इसलिए मैं ऐसा वेद ऐसा समझो कि मैंने इसलिए किया, तुम्हारा वैसा ही निरंतर ध्यान हमारे तरफ में लगा रहे। कहते जैसे वाह बहुत ठीक आप कह रहे हैं, बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं, हम लोगों का तो आपका ध्यान होता नहीं है कभी, हम लोगों को तो प्रेम ही नहीं हुआ। नहीं नहीं बात तो समझो, मैंने एक प्रकार की बात कही, अब तुम लोगों की बात कह रहे हैं, अब कह रहा हूँ जात प्रेम वाले जो हैं, जिनको प्रेम है उसको किस लिए, और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए, तुम्हारा प्रेम है जानता हूँ और दिन रात वो बढ़ता ही रहता है, किंतु उस प्रेम में यदि बीच बीच में उसमें क्या होता है अमेंडमेंट या क्या होता है रिन्यू नहीं होने पर वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए रिन्यू होने की भी जरूरत है। जैसे पूतना जी आकर के यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम उसको और बढ़ा, इसी तरह से यहाँ पर नवीनीकरण करता हूँ, इसी प्रकार से तुम्हारे प्रेम को मैं बढ़ा रहा हूँ, अब इसी चीज की सफाई दे रहे हैं कृष्ण आगे, तुम जात प्रेम नहीं हो, तुम कैसी हो अजात प्रेम नहीं, तुम्हारे लिए पिछली बात नहीं कहा लब्ध धना धन नष्ट, तुम्हारा प्रेम ही नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए ये दूसरा उदाहरण दे करके वो बतला रहे हैं। एवं मदर्थो धितलोक वेद स्वानां हि वो मई अनुवृत्ते बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मई सूतम अर्हत तत्प्रियम किया, हे मेरी प्राण प्रिय सखियां, एवं मदर्थो धितलोक वेद उज्जित लोक वेद, उज्जित माने क्या, तुम लोगों ने संसार का लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, परिवार का धर्म, संसार का धर्म, आर्य धर्म, आर्य पथ, जो कुछ था मत अर्थ है मेरे लिए, इसका दूसरा उदाहरण विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं ऐसा, वो भी मद अर्थ है, मेरे सुख के लिए ऐसा किया, अपने सुख के लिए नहीं, हमारे सुख जिसमें हो, और लोग छोड़ सकते हैं अपने सुख के लिए, अपने माता पिता को तो सहज ही में पुत्र छोड़ देता है आजकल, बेटी भी छोड़ देती है, अपनी स्त्री को भी पति छोड़ देता है अपने सुख के लिए, ये सब सब छोड़ा, धन संपत्ति भी चारों